सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम मतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोगम वियोगम योग संगितम। ट्रांसलेशन। इन दैट जॉयस स्टेट वन इज सिचुएटेड इन बाउंडलेस ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस एंड एंजॉयज हिमसेल्फ थ्रू ट्रांसेंडेंटल सेंसेस। Established thus, one never departs from the truth, and upon gaining this, he thinks there is no greater gain. Being situated in such a position, one is never shaken even in the midst of greatest difficulty. This indeed is freedom from all miseries arising from material contact. So, आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय के 21वां, 22वां और 23वां श्लोक से पढ़ रहे हैं, जहां भगवान योग पद्धति के द्वारा सर्वोच्च आनंद और सुख प्राप्त करने का जो उपाय है ये यहां बतला रहे हैं। वैसे इस संसार में सब लोग आनंद की खोज में हैं, सब लोग सुख की खोज में हैं, और हम जो भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारा यही एक उद्देश्य होता है कि हम इसके द्वारा सुख प्राप्त करें। कोई ऐसा काम इसलिए नहीं करता जिसके द्वारा उसे दुख मिले या अशांति हो। तो हमारा हर एक चीज करने का उद्देश्य यही है कि हम सुख प्राप्त करें। पर दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका चेहरा बहुत सुखी लगता है, खास करके बंबई में। हाँ, अगर आप ट्रेन में चढ़ेंगे तो बस एक चीज़ नहीं दिखता, वो है कोई सुख चेहरा। हालांकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है पूरे संसार में, पूरे सृष्टि में, जो सुख नहीं चाहता है। कहा जाता है कि दो ही लोग सुख होते हैं। हाँ, दो तरीके के व्यक्ति सुख होते हैं, पूर्ण आत्मज्ञानी पुरुष या जो एकदम पागल। पर कम से कम यहाँ ये दोनों में कोई है नहीं, दोनों कैटेगरी में। शायद हाँ सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स यहाँ होंगे आत्मज्ञानी, पर कम से कम दूसरा कोई पागल नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सब सुख की खोज में है पर नहीं मिल रहा। पर यहाँ यही बतलाते हैं भगवद गीता में भगवान कि इस भौतिक संसार के क्षणिक चीजों में आप अगर सुख और आनंद प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी नहीं पा सकोगे। सुख जो है साधारणतः इंद्रियों पर निर्भर है, हमारी इंद्रियों के द्वारा हम सुख का और आनंद का अनुभव करते हैं साधारणतः। आंखों से कुछ अच्छे तो हमको बहुत सुख मिलता है, कानों से बहुत अच्छी चीजें सुनते हैं जो हमें अच्छा लगता है वो हमें सुख मिलता है, नाक से कुछ अच्छी चीज़ों के सुगंध लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जीवा से कुछ अच्छी चीज़ों का आस्वादन करते हैं तो हमको अच्छा लगता है, सुख मिलता है। इसी तरह से स्पर्श इंद्रिय से कुछ अच्छी चीज़ों का स्पर्श होता है, सुख आनंद मिलता है। तो इंद्रियों के ऊपर निर्भर है साधारणतः से ये सुख। और इस संसार में हम देखेंगे कि जिस व्यक्ति की चेतना जितनी बढ़ी हुई है उतनी सुख उसको ज्यादा अनुभव होता है। एक पत्थर के सारे इंद्रियां नहीं है तो पत्थर को सुख या दुख का अनुभव नहीं होता है। उससे थोड़ा ज्यादा चेतना जो है बड़ी वो है पेड़ में, पेड़ की इंद्रियां नहीं है पर उसमें जान है, चेतना है पर उतना विकसित नहीं हुआ है। तो उसे हम देखते हैं कि चाहे बरसात में हो या गर्मी में हो या ठंडे में हो, आराम से खड़ा हुआ, उसे कोई सुख या दुख उसे पूछा जाए, भाई आप सुख से हो, बोले हाँ बहुत सुख है, गर्मी में अच्छा लगता है, गर्म लगता है, ठंडी में ठंड लगता है, और बरसात में शायद बरसात आती है तो सहन करते हैं। पर हमारी चेतना बहुत विकसित हुई है, हम अगर जाके वहाँ पेड़ के समान खड़े हो जाएंगे तीन दिन क्या 3 घंटे भी, हम सहन नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे हमारी चेतना विकसित होती जाती है, वैसे वैसे हमारा सुख का अनुभव करने का जो प्रवृत्ति है वो भी ज्यादा बढ़ता जाता है। तो इस संसार में जो सुख है, भौतिक सुख जो है, इस संसार का सुख, ये भगवान बतलाते हैं कि क्षणिक है, और क्षणिक होने के कारण पूरे तीनों लोकों में जो भी सुख है वो भी अगर आपको प्राप्त हो जाए तो भी आप पूर्ण तरीके से सुख नहीं हो सकते। इस 84 लाख जो योनियां हैं, 84 लाख योनियां किस चीज पर निर्भर की गई है? जिस तरीके पर चेतना विकसित है, कम एकदम कम से कम चेतना, जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति, स्थावरा लक्ष विंशति 20 लाख, जलजा नवलक्षाणी जो जल में प्राणी है उसके बहुत कम है, मतलब 9 लाख, 9 लाख तरह तरह के जीवात्मा है उनमें चेतना बहुत कम है। स्थावरा लक्ष विंशति, स्थावर में थोड़ा विकसित चेतना है, उसमें थोड़ा और है। उसके बाद कृमय, जो कृमि है वो 11 लाख है, और इस तरीके से 4 लाख जो है वो मनुष्य योनि है। तो इस तरीके से जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है वैसे वैसे अलग अलग योनियों में अलग अलग चेतना के अनुसार अलग अलग सुख का अनुभव होता है, और हर एक व्यक्ति को वो लगता है कि वही सुख अत्यधिक है, पर सचमुच में वो नहीं है। पेड़ को लगेगा कि जब ठंडी आती है, ठंडी के मौसम में ठंडा लगता है, बहुत अच्छा है, ये अत्यंत सुख है, आज बहुत ठंडा लगा तो बहुत अच्छा था, आज बहुत बारिश आई तो बहुत अच्छा लगा, पर इसे ये नहीं मालूम कि इससे भी बेहतर चीज कोई है। इसी तरह से अगर आप कसाई खाने के सामने जाएंगे तो वहां बहुत सारे बकरे खड़े रहते हैं जो अभी जिनको मार देने वाले हैं, और उनके सामने ही एक को टांग के लाता और उसे खत्म कर देता है, और ये जो बकरा होता आराम से घास खाते खड़े रहता है आनंद से, और बोलता है आज घास में बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सुख है। उसे ये नहीं मालूम कि क्या आने वाली है, और वो समझता है कि ये जो सुख मैं भोग कर रहा हूं बहुत आनंद है। एक सुअर जो है मनुष्य के विष्ठा खाने में बहुत आनंद लेता है, जितना आनंद हम लेते हैं कुछ अच्छे मिष्ठान खाने में, कोई अंतर नहीं है, पर उसे वो उच्चतम लगता है, पर हमें लगता है कि नहीं नहीं कैसा जन्म है ये। तो इस तरीके से जैसे जैसे चेतना की विकास होती है वैसे वैसे सुख का अनुभव ज्यादा होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि सबसे अनंत सुख कौन सा है, क्योंकि हम समझते हैं कि मेरे लिए ही सबसे अच्छा है, पर हमसे जो ऊपर स्थिति में है वो समझता है कि अरे ये तो उतना नहीं है। कहा जाता है कि स्वर्ग सुख जो है, सोमरस का जो सुख है, वो हमारे लिए हम सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। देवेंद्र जो राजा इंद्र को, इंद्रलोक में जो सुख है, चंद्रलोक में जो सुख है, वो हमारे जो अब हम सुख का अनुभव करते हैं इससे 1000 गुना ज्यादा है। तो ये सुख जो है एक रिलेटिव चीज है, आपको अलग, हमको अलग, हरेक को अलग अलग लगता है, पर ऑब्जेक्टिवली यानी एकदम सही तरीके से देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ सुख क्या है? वो सुख होता क्या है, कैसे उसको प्राप्त किया जाए, और जो व्यक्ति उस सुख का अनुभव कर रहा है उसका लक्षण क्या है, ये भगवद गीता में भगवान ये 3 श्लोकों के अंदर बड़े सुंदर से एक एक शब्दों में भी पूर्ण तरीके से इसका विवरण करते हैं कि सच्चा सुख क्या है, और कैसे पहचाना जाए कि ये व्यक्ति या हम उसका अनुभव कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि हर एक व्यक्ति कहेगा मैं सुख हूं। जब इंद्र को बृहस्पति के शाप से एक सुअर का जन्म मिला था, तो नारद मुनि खुद आए और बोले भाई आप इंद्र का पदवी वापस आ जाओ, तो बोलने लगे नहीं नहीं नहीं, मेरी पत्नी है, मेरे सुंदर सुंदर से बच्चे हैं, और हमारा एक सुंदर यहां खेलने का मैदान है कीचड़ का, इसमें इतना आनंद आता है कि मैं नहीं आ सकता वहां, मेरी बहुत सारी जिम्मेदारी है अभी, मैं कैसे ये सब छोड़ के इंद्र की पदवी ले सकता हूं, इंद्र बाद में। और ये नहीं, वो पूर्ण तरीके से पूर्ण श्रद्धा से कह रहा था कि मैं एकदम सुख हूं, कोई चिंता नहीं है मुझे, और नारद मुनि को उनका सर काट कर वापस ले जाना पड़ा, बोले अब तुम नहीं, ऐसे नहीं मानोगे। तो इस तरीके से सचमुच अनंत सुख क्या है, और जैसा अनुभव कर रहा है इसका लक्षण क्या है, पहला श्लोक में बताते हैं, सुखम आत्यंतिकम यत् तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलसि तत्वतः। बहुत सुंदर से इसका वर्णन किया गया है, सुखम आत्यंतिकम यत् तद्, सुखम अत्यंतिकम सबसे सर्वश्रेष्ठ सुख क्या है, यत् वो है जिसके द्वारा बुद्धिग्राह्यम, बुद्धिग्राह्यम, बुद्धिग्राह्यम का मतलब है जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो असली सुख का अनुभव कर सकता है। एक व्यक्ति जितना ज्यादा बुद्धिमान होता है उतना ज्यादा सुख का अनुभव कर सकता है, जिसकी बुद्धि जितनी कम होती है उसका सुख भी उसी में तृप्त हो जाता है। वो जो कम योनि में है, जो नीचे योनियों में है, उनका बुद्धि बड़ा नहीं है, तो इसीलिए जो थोड़े बहुत इमीडिएट बस क्षणिक में मिला उनको उसमें सुख हो गए, थोड़े में सुख मिल जाता है बस, उसके लिए कुछ भी करने वो बाद के बारे में सोचते नहीं है कि भाई अभी कुछ कर लूंगा तो बाद में मुझे इससे गड़बड़ी होने वाली है, आज तो अभी तो सुख का अनुभव हो जाएगा पर बाद में यही मेरा दुख का कारण बन जाएगा, ये नहीं सोचता है, वो बड़े सुख से रहता है और इसी तरह से दुख भी अनुभव करता है। पर केवल बुद्धि के द्वारा हम असली सुख का अनुभव कर सकते हैं, ये सारे जो दूसरे तरीके के सुख हैं इससे परे होकर, बुद्धिग्राह्य। और ये बुद्धि के द्वारा हम क्या समझ सकते हैं, यह समझ सकते हैं कि भाई हमारी इंद्रियां जो अनुभव कर रही है ये सचमुच में ये इंद्रियां अनुभव नहीं कर रही है, सुख जो हमारी इंद्रियों के द्वारा हम अनुभव कर रहे हैं ये इंद्रियां अनुभव नहीं कर रही है। क्यों? उदाहरण के लिए अगर एक व्यक्ति एक क्षण तत्काल वहीं अपना शरीर छोड़ दे, आत्मा उसकी चली जाए, तो वही आंख, वही नाक, वही हाथ, सब कुछ चार पांचों इंद्रियां वही हैं, पर वही इंद्रियों के द्वारा वो सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। वही आंख है, वही नाक है, पर वही सुख जो है उसको कोशिश कीजिए और वो अनुभव नहीं कर सकता है। यानी सुख करने वाला व्यक्ति जो था वो वहां से निकल गया है शरीर से। तो सुख करने वाला जो व्यक्ति है असलियत में, जो आत्मा है, वो अनुभव कर रहा है इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां अपने आप में अनुभव नहीं कर रही है, इंद्रियों के द्वारा आत्मा अनुभव कर रहा है। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो इंद्रियों के सुख में नहीं लगता, बल्कि वो समझता है कि इंद्रियों को जो नियंत्रण कर रहा है आत्मा, वो सचमुच में सुख का अनुभव करने वाला व्यक्ति है। एक मृत व्यक्ति का शरीर हमें दे दिया जाए, एक आदमी को दे दिया जाए एक मृत औरत का शरीर, बोले इसका उपभोग करो, वो कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो आनंद देने वाली चीज है वो वहां से चली गई है, आत्मा जो है वो निकल गई है। तो वही औरत जिसके द्वारा वो अनुभव करने का उपभोग करने का शायद सोच रहा हो, और वो आत्मा निकलने के बाद उसे उपभोग करने की सोचेगा भी नहीं क्योंकि आत्मा निकल गया। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं, बुद्धिग्राह्यम, बुद्धि से हम समझ सकते हैं कि ये इंद्रियों सचमुच में नहीं है बल्कि ये आत्मा जो है ये सुख का अनुभव कर रही है। और तब हम समझेंगे कि असलियत में आत्मा जो है वो एक लाइट नहीं है, हम कहते हैं कि बस एक एक प्रकाश है, वो प्रकाश नहीं है, एक व्यक्ति है, उसकी भी इंद्रियां हैं। अगर उसकी इंद्रियां नहीं होती तो इस शरीर के ऊपर भगवान इंद्रियां नहीं बनाते। कार में ये जो विंडस्क्रीन है, किसे कहते हैं, जिसके द्वारा हम देखते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि ड्राइवर के आंख हैं। अगर आंख नहीं होते तो ये इतने बड़ा ग्लास नहीं लगाया जाता जिसके द्वारा वो देखता। तो विंड सीट वो जो खुद देखती नहीं है, कार का जो विंडस्क्रीन है वो खुद देखता नहीं है, बल्कि जो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है वो इसके द्वारा देख रहा है। इसी तरह से ये सारी जो इंद्रियां हैं ये इसीलिए बनाई गई हैं ताकि हम इनके द्वारा अनुभव करें। आंख इसीलिए है क्योंकि आत्मा का आंख है, कान इसीलिए हमारा है क्योंकि आत्मा का कान है, और इसके लिए एक उसको श्रवण करने के लिए कान बनाया गया है जिसके द्वारा हम श्रवण करते हैं। तो ये कान सचमुच में श्रवण नहीं कर रहा है। तो आत्मा का अस्तित्व है, मतलब एक वो व्यक्तित्व है, वो व्यक्ति है, उसकी इंद्रियां हैं, और वो एक व्यक्ति है और वो देखने में कैसा है, एकदम हमारे जैसा। कैसे? अगर हम देखते हैं कभी सामने शोरूम में जाते हैं, कपड़ों के शोरूम में, तो वहां बहुत सारे पुतलों को साड़ी या जीन्स ऐसे कुछ पहनाया जाता है, पर कपड़ों का अपना एक रूप नहीं होता है। पर जब उस पुतले को पहनाया जाता है तो वो उस पुतले का रूप जो है वो धारण करता है, जैसे कुर्ता है या कुछ है जिसको पहनाया जाता है उसके साइज में बनाया गया है, पर अपने आप में इसका कुछ रूप नहीं है। इसका रूप तब है, इसी द्वारा बनाया गया है जिसका शरीर का एक रूप है। इसी तरह से ये जो मनुष्य शरीर है ये इसके ऊपर ढका गया, आत्मा के ऊपर रखा गया है, और आत्मा जो रूप है वही रूप मनुष्य का हो जाता है। जैसे इसके ऊपर एक ग्लव्स पहनते हैं, जब ग्लव्स पहनते हैं हाथ में, तो उसके भी ग्लव्स के भी पांच उंगली होते हैं, एक होता है ऐसे, चार होते हैं, एक छोटा होता है, वो इसके हाथ के माप पर बनाया गया है। इसी तरह से जो शरीर मनुष्य का शरीर है ये आत्मा के साइज के अनुसार बनाया गया है, तो आत्मा का भी स्वरूप ऐसा ही है जैसा हम हैं, तो उसका एक स्वरूप है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के भगवान कहते हैं, अहम बीज प्रद पिता तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रद पिता, मैं पिता हूं और भगवान का स्वरूप है। अगर पिता का स्वरूप है तो बच्चा का स्वरूप होता है, और बच्चा का जो स्वरूप है साधारण तो वही होगा कि पिता का, उसका भी वही स्वरूप होगा। तो ये बुद्धि ग्राह्यम, वो व्यक्ति समझता है कि सचमुच में सुख का अनुभव करने वाला शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो वो शरीर को छोड़कर, इंद्रियों को छोड़कर आत्मा की सुख करने के लिए देखता है, क्योंकि बुद्धिमान आदमी है वो। यही है अतीन्द्रियम, सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। अतीन्द्रियम मतलब इंद्रियों से परे, कि जो हम बाहर भौतिक इंद्रियां देखते हैं इससे परे है, इंद्रियों से परे, अति इंद्रियम। नहीं तो योगी लोग ऐसे तपस्या करके क्यों बैठते हैं, हजारों साल ऐसे बैठे रहते हैं। रमनते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनी, हिमालय में हम देखते हैं करोड़ों साल तक कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं, सब इंद्रियों को काबू में किया, आंख बंद, कान बंद, नाक बंद, सब बंद, फिर क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या आनंद ले रहे हैं कि वो लोग आराम से बैठे हुए हैं, सब उनका इंद्रियां सूखी जा रही है पर अत्यंत आनंद में है वो। अगर आनंद नहीं मिलता तो क्यों बैठते ऐसे हजारों साल तक? ये कैसे है? रमनते योगिनो अनंते, अनंत आनंद। हमारा जो इंद्रियों, इस संसार का जो भी आनंद है वो कुछ क्षण के लिए है। आज जो चीज आनंद दे रहा है वो कल नहीं दे पाएगा, वो खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। आप कुछ खा रहे हैं वो खत्म हो जाता है बाद में, आप किसी चीज का अनुभव कर रहे हैं वो खत्म हो जाता है बाद में, वो प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि शरीर जो है शरीर का ही नाश हो जाता है, और तब व्यक्ति बहुत दुख हो जाता है। तो इसीलिए योगिनो अनंते, अनंत आनंद। और ये अनंत आनंद का कैसा अनुभव कर रहे हैं? क्योंकि आत्मा जो है न हन्यते हन्यमाने शरीरे अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, क्योंकि आत्मा जो है अजो, इसका कभी जन्म नहीं हुआ था, नित्य नित्य है, शाश्वत है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मरने पर भी वो मरता नहीं है। सो आत्मा नित्य है, भगवान का अंश है, भगवान नित्य है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान के हम अंश हैं, अब भगवान नित्य हैं। आद्यम पुराण पुरुषम नवयौ, आद्यम पुराण पुरुषम गोविंदम आदि पुरुषम, तो हमेशा के लिए रहते हैं और हम उनके नित्य अंश हैं, सनातन। सनातन अंश होने के कारण अंश और पूर्ण में जो आदान प्रदान होता है उसका जो आनंद है वो भी नित्य है, क्योंकि भगवान नित्य हैं, हम नित्य हैं, उनके अंश हैं, और भगवान आनंदमयोभ्यासात पूर्ण तरीके से आनंद, आत्मा राम है वो, और उनकी जब हम सेवा में लगते हैं तो हमेशा के लिए वो आनंद प्राप्त करते हैं जो कभी खत्म नहीं होता, शायद शरीर भी खत्म हो जाए। सत्यानंद चिदात्मनी, ये जो आदान प्रदान जीव और भगवान का होता है इसे रासलीला कहते हैं, यही रासलीला। रासलीला मतलब लोग समझते हैं जो भगवान ने, जो श्री कृष्ण ने जो गोपियों के साथ रासलीला किया वो हमारी बुद्धि से, अपनी बुद्धियों से समझकर हम समझते हैं कि वो एकदम भौतिक स्तर का आनंद था, भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं। पर सचमुच में सुखदेव महाराज बतलाते हैं परीक्षित महाराज को कि उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए गोपियां और जो गोप बाल थे कोई उसमें मामूली व्यक्ति नहीं थे, शुद्ध जीव थे वो लोग, पूर्ण तरीके से कृतपुण्य पुंज, कृतपुण्य पुंज, बहुत करोड़ों साल की पुण्य से वो भगवान की लीला में भाग ले सके थे, वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं, लोग नहीं थे। तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान के और एक गोपियों के साथ जो रासलीला है वो कोई एक भौतिक तरीके के एक व्यक्ति और एक आदमी और औरत के बीच जो संबंध है ऐसा, ये मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता। अगर इसको हम एक मामूली चीज समझ बैठे तो इतनी मूर्खता है। कैसे? उदाहरण के लिए कहा जाता है, एक व्यक्ति था जिसे गन्ना खाने का बहुत इच्छा हुआ, पर उसे मालूम नहीं कि गन्ना क्या होता है, और वो किसी और के पास गया और बोलने लगा, भाई मुझे गन्ना खाना है। लोग कहते हैं कि गन्ने का रस बहुत अच्छा होता है, बताओ बचाए कृपया कि गन्ना कैसा होता है, वो होता क्या है। तो उसने सामने जो बंबू का झाड़ था उसे दिखाया और कहा, ऐसे एकदम ऐसे ही होता है वो। अच्छा अच्छा ठीक है। और उसके बाद वो बाहर गया और जंगल में जाकर सारे बंबू को तोड़ के उसको चाबने लगा, उसे खाने की कोशिश किया और उसके एकदम रस नहीं आया उसे। इस तरीके से हम गोपियों और भगवान, भगवान और गोपियों की जो लीला है वो गन्ने के रस के समान है, पर उसका जब हम हृदय, मलिन हृदय से बिना भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की स्थिति को जाने अगर उसका आस्वादन लेने की कोशिश करेंगे और उसका अनुकरण करने की कोशिश करेंगे इस भौतिक संसार में, तो ऐसा ही है कि भाई गन्ने को गन्ना समझकर ऐसे बंबू के रस को खाना, और उसमें हम कभी आनंद प्राप्त नहीं करेंगे और वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, हम लोग बहुत तंग आ जाएंगे और बोलेंगे छह ऐसा लीला भी नहीं चाहिए, भगवान धाम जाना भी नहीं चाहिए, मैं तो तंग आ गया, मैं हर गुरुवार को एड्स पेशेंट्स देखने के लिए जाता हूँ जीटी हॉस्पिटल, वहां उन लोगों का यही अनुभव है, तंग आ गए। उनको अगर रासलीला के बारे में बताया जाए तो बोलेंगे बाबा नहीं कभी नहीं, क्यों? क्योंकि ऐसे बंबू का रस लिए हैं और वो समझ रहे हैं कि अच्छा ईख था ये। तो ये है, जब तक हम उस स्थिति को नहीं समझेंगे, जब तक उस स्तर पर नहीं आएंगे भगवान की दिव्य स्थिति को, अवजानंति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। लोग कहते हैं कृष्ण अरे वो ठीक है वो ऐसे थे वैसे थे, कृष्ण की स्थिति को नहीं जानते सबसे पहले, गोपियों की स्थिति को नहीं जानते, फिर कृष्ण की स्थिति तो दूर की बात है। मम भूत महेश्वरम अवजानंति माम मूढ़ा, मूढ़ व्यक्ति जो है वो इसे ऐसे समझ लेते। ये रासलीला है भगवान के साथ जो नित्य लीला है, शाश्वत लीला है। तो अतीन्द्रियम बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, पर जब हम कृष्ण भावना में प्रगति करते हैं धीरे धीरे, तब धीरे धीरे हम उस स्तर पर आते हैं, हमारा जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब हम अपनी स्थिति को समझते हैं, भगवान की स्थिति को समझते हैं, गोपियों की स्थिति को समझते हैं, और तब हम उसका असली तरीके से आस्वादन कर सकते हैं। क्योंकि इसका सबूत क्या है, जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे इसका एक ही सबूत है कि वो आनंद जिसमें हम बहुत रमण करते थे पहले, वो आनंद हमें एकदम धीरे धीरे, जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे ये भौतिक आनंद का जो रस है हमको धीरे 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 कम लगने लगेगा। वही चीज जिसके बिना हमको लगता था कि हमारा जीवन एकदम नीरस है, हम लगेगा नहीं 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 अभी तो असली रस मिला है मुझे। इस तरीके से ये एक सबूत है कि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो कहीं कुछ गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी है कहीं, ये हमको समझना चाहिए। धीरे धीरे इस भौतिक संसार का जो रस है जिसमें हम लोग और लोग आनंद लेते हैं वो हमको धीरे धीरे कम लगना चाहिए, तब हम समझना चाहिए कि हम प्रगति कर रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं स्थितस् चलति तत्त्वतः वेत्ति यत्र न चैवायम, वेत अगर जिसको जान लिया उसने, वेत्ति वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितस् चलति तत्त्वतः, जो परम सत्य का अनुभव कर लिया है उसको ये जो क्षणिक चीज है, जो तुच्छ चीज है उसमें कुछ आनंद नहीं होता। स्थितस् चलति तत्त्वतः, और उस तत्व में जब स्थित हो जाता है कोई चीज जो है उसके लिए आनंद नहीं देता। पर कैसे पता चले कि उसका हम अनुभव कर रहे हैं या नहीं, हमें उसका रस मिला है या नहीं, इसका सबूत क्या है? तो वो अगले श्लोक में बताया जाता है, यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचाल्यते। दो लक्षण है इसके बताए गए, क्या है? यम लब्ध्वा, जो अगर हमें मिल जाए, उपलब्ध हो जाए, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम, इससे बढ़कर और कोई लाभ, मन्यते न अधिकम ततः, कोई भी उससे ऊपर का अगर हमें लालच दिखाया जाए तो हम कहेंगे हमें जरूरत नहीं भाई। एक व्यक्ति जिसके पास करोड़ों रुपया है, उसे कहा जाए देखो ऐसे काम करोगे तो तुमको मैं 100 रुपया दूंगा, तो कहेगा नहीं नहीं तुम ही रखो 100 रुपया, हमें जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से इस संसार में लोग कुछ चीजों के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं, पूरी जीवन उसी की कोशिश में लग देते हैं, और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, कितनी बड़ी तपस्या उठाने तैयार हैं, जो एक भक्त शायद भगवान के लिए भी उठाता नहीं है, भगवान के प्रेम के लिए भी नहीं उठाता है, उससे ज्यादा तपस्या ये ऐसे लोग जो माया में हैं पूर्ण तरीके से इस भौतिक संसार में आनंद लेने के लिए कोशिश करते हैं। क्या है, समझते हैं कि भाई पैसा मुझे आनंद देगा, थोड़ी बहुत अगर पैसा हो जाए ज्यादा, अभी मेरी स्थिति ठीक नहीं है, इससे बढ़कर थोड़ा अगर स्थिति अच्छा हो जाए तो मैं सुख हो जाऊंगा, बस यही मेरा उद्देश्य है। पर बलि महाराज के पास जब वामन देव आए तो उन्होंने बस 3 पग जमीन मांगा, और वामन देव बस 3 फुट के थे, उन्होंने 3 पग जमीन मांगा तो बलि महाराज हंसने लगे, अरे मूर्ख मांगते हो तो भी तो कैसे चीज मांगते हो, तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि किसके पास क्या मांगना है, हा? मैं समझता था कि तुम कद के छोटे हो, पर सचमुच में तुम बुद्धि के भी छोटे हो। कोई करोड़पति के पास जाए और बोले भाई मैं तुमसे खुश हूं, बोलो क्या मांगिए, क्या चाहिए, अब बोलने लगे मेरे को बहुत भूख लगी है, 4 रोटी दे दो, अरे वो तुमको ऐसे चीज देने के लिए तैयार है जिससे तुम्हारी पीढ़ियां आराम से रह सकती हैं, खुश रह सकती हैं, पर हम मांग रहे हैं कि बस 4 रोटी दे दो, अभी भूख लग रही है हम। तो इस तरीके से ऐसे चीजों के पीछे पूरा जीवन लगा देते हैं, और वो मिलने के बाद और ज्यादा चिंता, जब नहीं था तो नहीं था, नहीं था नहीं था उसका चिंता, जब था तो उसको खोने की चिंता, अभी खो गया तो। इस तरीके से न शोचती न कांक्षती, ये शोक करना और कांक्षा, आकांक्षा करते हैं, मुझे चाहिए चाहिए, जब मिल गया, अगर खो गया तो। तो इस तरीके से ये डर, आकांक्षा और शोक में हमारा पूरा जीवन बीत जाता है, इसमें सचमुच में सुख नहीं है। और तब वामनदेव कहते हैं कि अगर मैं 3 पग के जमीन में सुख नहीं हूं तो 3ों ब्रह्मांड भी जीत के मैं सुख नहीं हूं, क्यों? क्योंकि तुम्हें 3ों ब्रह्मांड मिल गया है और अभी तुम यज्ञ कर रहे हो कुछ और प्राप्ति करने के लिए। तो कहते हैं जब तक एक व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयम में नहीं करता है तब तक उसे पूरे संसार की 3ों लोकों की इंद्र तृप्ति की वस्तुएं मिल जाएं तो भी वो सुख नहीं हो सकता। तो ये सच्चा रहस्य है, वामनदेव वहां बतलाते हैं बलि महाराज को। तो इस तरीके से लोग समझते हैं कि और थोड़ा मगर पैसा मिल जाए तो मैं सुख हो जाऊंगा, सबसे बड़ी यही माया है। दूसरा कि भाई नहीं मुझे पैसा तो नहीं चाहिए पर मेरी फील्ड में मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, 4 जन मुझे पहचानने लगे तो बोले हाँ भाई इस फील्ड में बहुत महान व्यक्ति है, और उसके लिए कुछ भी तपस्या करने के लिए तैयार है। या फिर कोई सोचता है कि मैं अभी और थोड़ा अगर सुंदर हो जाऊं तो मैं खुश हो जाऊंगा, और इसीलिए जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है उसके बहुत खर्च होता है और लोग खर्च करने के लिए तैयार हैं कुछ भी, यहां तक कि वो प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए तैयार है, पूरा चेहरा बदल देने के लिए तैयार है, ये सोच करके हाँ और थोड़ा अगर मैं सुख हो जाऊं, मतलब देखने में सुंदर हो जाऊं, कुछ भी पैसा देने के लिए तैयार हूं, नाक थोड़ा अगर सीधा हो जाए, कान थोड़ा एकदम सही हो जाए तो मैं और भी सुंदर हो जाऊं और तब मैं सुख हो जाऊंगा, ये सत्य है। और कोई सोचता है कि भाई ज्ञान प्राप्त करें इस भौतिक संसार में, 4-5 कम से कम जब तक PhD नहीं है तब तक क्या फायदा, अरे MBBS में रखा ही क्या है जब तक MD नहीं। तो इस तरीके से और 4-5 जब डिग्री प्राप्त करे तब मैं सुख हो सकता हूं, और उसके लिए नाक रगड़ कर जिसे बोलते हैं ना, ऐसे तरीके से तपस्या जो करते हैं, जो भक्त भी शायद नहीं करते हैं। आप देखेंगे दानवों को, हिरण्यकशिपु की तपस्या देखिए, रावण की तपस्या देखिए, सब कांप उठते हैं, पूरे तीनों लोग कांप उठते हैं, पर कभी भक्तों की हम नहीं सुनते कि इतनी तपस्या किया कि पूरा संसार हिल गया। जब हिरण्यकशिपु ने किया था इतना आग निकला कि पूरे तीनों संसार में डगमगा गया। इस तरह से जो दानव प्रवृत्ति के होते हैं राक्षस लोग अपनी इंद्र तृप्ति के लिए इतनी बड़ी तपस्या करते हैं जो शायद भक्त भी नहीं करते। हम समझते हैं कि हम चार नियमों का पालन कर रहे हैं, सुबह उठ के नहाते हैं ठंडे पानी में, दो घंटा जप कर रहे हैं, बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं। अरे कुछ भी नहीं है, हम कभी कभी 8 घंटे सो जाते हैं, कुछ लोग 4 साल से शायद 4 ही घंटे सो रहे हैं क्योंकि वो घर पहुंचते हैं उसी समय, खड़े खड़े सोते हैं ट्रेन में, उसको मैंने मतलब सोने का टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहते। वो बोलते हैं चर्च गेट से बोरीलो जाने तो टाइम हो जाए, वहीं सो जाऊंगा, बस पहुंचूंगा घर, फिर वहां खत्म करके फिर वापस आऊंगा। इतना समय वो इतने टाइम कॉन्शियस होते हैं कि हम उतने नहीं होते, इतनी तपस्या करते हैं, कभी कभी खाते ही नहीं, खाना भूल जाते हैं। हमें कभी कोई है जो जब इतना ध्यान से किए कि खाना खाना भूल जाए? कभी नहीं। और लोग कहते हैं, लोग ऐसे एक उदाहरण में जब गया था एक प्रिंटर के पास, वो बोला कि एक ऑर्डर आ गया, तो बोला खाऊंगा 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 खाऊंगा, 3 घंटे मेरे सामने बैठा रहा, वो खाया नहीं, वो सोच रहा था और बोल रहा था कि मैं सुबह से कुछ खाया नहीं हूं। मैं बोला तुम्हारी ऐसी रोज की एकादशी हो जाती है, मैं 15 दिन में एक बार करता हूं, फिर सोचने लगता हूं अरे 15 दिन आने वाला है अभी, बस 14 गिनने लगता हूं। और सोचते हैं यानी इतनी तपस्या वो ऑलरेडी कर रहे हैं जो हम सोच भी नहीं कर सकते भक्ति के लिए। ये कलयुग का लक्षण है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग यही उपद्रतः, मंद एकदम मंद व्यक्ति होते हैं। मंद किस लिए? आध्यात्मिक जीवन के लिए एक कदम लेने के लिए मंद है, और भौतिक के लिए गधे के समान काम करने के लिए तैयार है। सचमुच में मंद नहीं है, आलसी नहीं है, कलयुग के लोग आलसी नहीं है, पर कहा गया है भागवत में कि आलसी हैं। आलसी किस लिए हैं? बोले बगल में मंदिर है, दो कदम दूर है, आ जाइए। बोले हाँ कभी आएंगे, समय नहीं है, जब समय मिलेगा आएंगे। पर आप कहिए कि अगर ऑर्डर है पर वो पार्टी को मिलना है तो आप डायरेक्टली वहां कांदिवली जाना पड़ेगा। बोले चलिए अभी चलिए, तैयार है, इतनी तपस्या करने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से ये सारे चीज जो प्राप्त करने वाले हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितनी बड़ी तपस्या करते हैं, घर छोड़ के जाते हैं, बोलते मेरे को घर जरूरत नहीं है, अगर इंग्लैंड में ही मेरा अगर पूरा जीवन चला जाए और मुझे वो डिग्री मिल जाए तो घर वालों को बस ठीक से, पर भक्त अगर घर छोड़ दे बाई चांस तो बोले अरे क्या मूर्ख, क्या पाने के लिए तूने छोड़ दिया ऐसे, इतना मूर्ख व्यक्ति है तू। और वही अगर वो छोड़ के चले जाए, वो सामने रहता है, वो कभी एक पैसा नहीं भेजता है घर से, और अमेरिका में है बल्कि बोलता है माँ बाप को कि थोड़ा थोड़ा पैसा भेजो, और 45 साल 45 साल हो गया अभी तक उसकी पढ़ाई चल रही है, 5वीं डिग्री चल रही है, पर वो भेजते बड़े खुशी से, मेरा बेटा बहुत पढ़ाई कर रहा है। तो इस तरीके से इस चीज को करने के लिए तैयार हैं, पर सुख असली सुख नहीं जानने के कारण नहीं जान पाते। तो ये हुआ यम लब्ध्वा, पर अत्यंत सुख जिसका प्राप्त है उसका लक्षण क्या है? ये सारे चीजें अगर उसे लालच दी जाए कि अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, ये मिल सकता है, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, तो ध्रुव महाराज कहते हैं नहीं, जरूरत नहीं है मुझे, अभी मुझे हीरा मिल गया है, अब कांच का टुकड़े लेके मुझे क्या करना है। तो भगवान का जो नाम है, भगवान की जो भक्ति है, ये हीरे के समान है, और जिसे ये हीरा प्राप्त हो गया वो ऐसा कौन मूर्ख है जो ऐसे कांच के टुकड़े के पीछे जाएगा। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते न अधिकम ततः, ये पहला लक्षण है कि दुनिया की सारी चीजें अगर उसके सामने रख दी जाए तो भी वो कभी उसकी चिंता नहीं करेगा, बोले नहीं चाहिए, किसी स्थिति में मैं रहूंगा, पर भगवान की भक्ति ने उसे मैं अपने एक बिजनेस में आदान प्रदान नहीं कर सकता हूं, एक्सचेंज नहीं कर सकता हूं इस किसी चीज के लिए। और यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुनापि विचाल्यते, दूसरा लक्षण क्या है? इस भौतिक संसार में जितना भी खतरा आ जाए, जितना भी दुख आ जाए, कभी वो विचलित नहीं होता है, हालांकि नरक जैसे स्थिति में भी हो वो, पर एकदम स्वर्ग में रहता है, ये दूसरा लक्षण है उसका। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुनापि विचाल्यते, न दुखे न गुरुनापि, जितना भी बड़ा संकट आ जाए, क्यों? भौतिक संसार तो संकट ही संकट है, पदम पदम यत विपदम, पदम पदम यत विपदम, हर एक पद में भी संकट है, एक व्यक्ति परसों मुझे बता रहे थे, मैं कहा चलिए हम लोग ट्रेन में चलेंगे, बोले नहीं भैया ट्रेन में नहीं चलेंगे, हम तो बस में ही चलेंगे। क्यों? बोले 4-5 दिन पहले ऐसा बम फूट गया था, तब से हम ट्रेन में जाना बंद कर दिए, अभी 2-3 महीने हम नहीं जाएंगे, उसके बाद बस में मतलब ट्रेन में जाना शुरू करेंगे। पदम पदम या त्रिपदम पता नहीं, मैंने कहा भाई बस में भी हो सकता है। बोले कम से कम नहीं, हमें वो चिंता नहीं है, पदम पदम या त्रिपदम, उनकी चिंता इतनी रहती है भाई ये हो जाए तो वो हो जाए तो, पदम पदम हर पद में संकट। तो इस तरीके से इस खतरा और इस खतरे को भौतिक संसार के लोग कैसे स्वीकार करते हैं, दो तरीके से। एक तो है भाई आंखें बंद कर लो, बोलो खतरा नहीं है, अरे मूर्ख खतरा नहीं है, ऑस्ट्रिच मेंटेलिटी। देखिए ये रेगिस्तान में एक पक्षी होता है, पक्षी क्या एकदम बहुत बड़ा जानवर, कम पक्षी हो तो भागने वाला पक्षी है, इसको ऑस्ट्रिच कहते हैं, एकदम 5 फुट बहुत बड़ा शरीर, विशाल शरीर होता है इसका, और इसे जब कोई दौड़ाने आता है मारने के लिए, कोई शिकारी अगर आए तो ये क्या करता है, अपने इतने लंबे जो गले सर होता है, सर को रेती के अंदर डाल देता है, और वो समझता है पूरा शरीर उसका बाहर है, पहाड़ जैसा शरीर, और छोटा सा जो अंडे जैसा उसका जो सर है वो रेती के अंदर है, और वो समझता है बस मैं तो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं बहुत सुख हूं, और वो कुछ ना सुनना चाहता है वो ना देखना चाहता है। इस तरीके से हम, अगर हमको बताया जाए कि भाई बुढ़ापा आने वाला है, मृत्यु आने वाली है, अब भगवान का नाम लेने लगो, जल्दी करो, तो बोले नहीं 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 मुझे नहीं आने वाली। अरे कितने लोगों को आती है, अहनी अहनी भूतानी, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भाई हमारे सामने, ये सबसे बड़ी आश्चर्यजनक चीज है कि हमारे सामने इतने लोग मारे जा रहे हैं, पर हम सोचते हैं नहीं नहीं हमको अभी नहीं आने वाला, बहुत समय है, चाहे वो 90 साल का बुढ़ा क्यों ना हो। इस तरीके से आंख बंद कर लेते हैं, उसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहते हैं लोग, बोले ये सब क्या फालतू, ऐसे समय में आप क्यों ऐसे बात लड़ाते हो, छोड़ दो ये सब, उसके बाद सुनना नहीं चाहते हैं, कान बंद कर लेता है, जैसे ये ऑस्ट्रिच आंख बंद कर लेता है, बोलता है नहीं नहीं कोई है नहीं, कोई शिकारी विकारी कुछ नहीं, हालांकि एकदम सामने खड़ा भी मारने वाला है। तो इस तरीके से जब भौतिक संसार में लोगों को दुख आती है तो आंख बंद करके भूलना चाहते हैं उसे, या फिर अलग अलग तरीका ढूंढते हैं भूलने का, भौतिक संसार ने अलग अलग तरीका बनाया है। सचमुच में वो एस्केपिज्म है, 3 घंटा कोई पिक्चर में जाके बैठ गए फिल्म देखने, और बोले 3 घंटा कम से कम भूल जाएं तकलीफ को, बस 3 घंटा के बाद मालूम है कि फिर आने वाला है तकलीफ। तो इस तरीके से क्षण के लिए भूलना चाहते हैं, या टीवी लगा के बैठ गए सामने, कम से कम ये जब प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें पूरा डूब जाएं ताकि हम भूल जाएं, पर जैसे वो ऑफ करोगे फिर से चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से लोग इस भौतिक संसार में जो तकलीफ आते हैं उसको भूलना चाहते हैं उसको, हालांकि उनको तकलीफ होता है पर आंख बंद करके उसे स्वीकार नहीं करना चाहते, नहीं नहीं मैं सुख हूं, अरे बंबई का जीवन बहुत नरकीय है, नहीं 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 मैं तो सुख हूं, बहुत सुख हूं, क्या मुझे इतनी फैसिलिटी है भगवान की कृपा से, बस थोड़ा नाम कुछ देना है ना हमें खुश करने के लिए भगवान की कृपा से। तो इस तरीके से यस्मिन स्थिति, और दूसरा है कि वो डेंजर जो है, वो खतरा जो है उसमें एडजस्ट कर लेते हैं बड़े सुंदर से, और बोलते हैं ये तो है ही, सबको है मुझे क्या है। तो ये दो तरीका, या फिर आंखें बंद कर लो, या फिर बोला एडजस्ट कर लो बस ये तो है ही, देखो पूरे पूरे बंबई को दिन में 2-2 ही घंटा पानी मिलता है, तो मेरे को भी 1 घंटा मिलता है, बस ठीक है चलेगा। सचमुच में भगवान ने इतना पानी बनाया है कि 24 घंटे सब जगह आ रही है, पर अगर ऊपर बिल्डिंग में रहे 2 घंटा आ रही है, बोले नहीं 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 सबको मिल रहा है ठीक है चलेगा। बहुत मुश्किल है, नहीं बहुत मुश्किल है ट्रेन या जाना बड़ा मुश्किल है, बहुत तकलीफ है, हाँ तकलीफ सबको तो है ठीक है, उससे थोड़ा कम है क्योंकि हमारा घर स्टेशन के बाजू है तो इतना दूर जाना नहीं पड़ता स्टेशन से, बहुत करीब है, इस तरीके से एडजस्ट कर लो थोड़ा बहुत। तो या फिर आंख बंद कर लेते हैं या फिर भूलना चाहते हैं। पर भक्त का लक्षण क्या है, समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदम न तेषाम। ये भक्तों का लक्षण है कि भक्त जानते हैं, अरे भाई भौतिक संसार में हो, अगर अस्पताल में गए हो और बोले अरे यहां तो सब रोगी ही लगते हैं क्योंकि अस्पताल में हो, जेल के अंदर जाके बोले यहां तो सब कैदी लगते हैं, सब बुरे बुरे व्यक्ति लगते हैं, क्यों? क्योंकि तुम ऐसी जगह में हो। तो इस तरीके से भौतिक संसार में आकर बोलोगे अरे सब लोग मर जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु जर्शनम, ऐसी जगह में हो, पदम पदम या त्रिपदम, तो वो उसको धीरस तत्रण मुह्यति है, उसको स्वीकार करते हैं। जैसे ठंडी और गर्मी आती है उसके लिए तैयार कर लेते हैं। बंबई के लोगों को मालूम है, जैसे जून जुलाई आ गया तो छत्ता ले लेते हैं, गमबूट्स ले लेते हैं, रेनकोट ले लेते हैं, क्योंकि मालूम है अभी कभी आने वाला है रेन, बहुत बरसात आने वाली है। तो ये नहीं बोलते कि अरे बरसात आ गया आज तो ऑफिस नहीं जाना है, बंद नहीं कर, नहीं, वो तो चलता, काम चलता रहता है उनका। जो पहली बार आया है उसे कुछ नहीं मालूम, तो एकदम चकित हो जाता है, इसलिए वो इससे एकदम उनको कोई तकलीफ नहीं होता है और वो आराम से इससे चलते बनते मालूम है। और दूसरा चीज है, क्योंकि समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम, ये भौतिक संसार एक भव सागर बताया गया है, एक सागर है जिसको हम पार नहीं कर सकते। अगर सागर में हम डुबकी मारेंगे और उसको तैरने की कोशिश करेंगे, हम नहीं कर सकते। पर जब भगवान की आश्रय, भगवान के चरण का आश्रय एक ऐसे बहुत बड़ा जहाज के समान है जिसके शरण हम ले लें तो हम इससे पार हो सकते हैं। समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम, यही बोट है, एकदम स्ट्रांग बोट, जिसका हम आश्रय ले लिए तो डूबने की कोई शंका नहीं है, कोई 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 संदेह चांस नहीं है। तो महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम, भवाम बुधि जो पूरा संसार का भवाम अम्बुधि जो बहुत बड़ा सागर है वो क्या बन जाता है, वत्स पदम, एक बछड़े के जो खुर का निशान है उसमें जितना पैर कहते हैं उतना बन जाता है, जिसको एक छोटा बच्चा भी पार कर जाता है कूद के। तो इस तरीके से भव सागर हमारे लिए, एक भक्त के लिए, एक शुद्ध भक्त के लिए जो भगवान का शरण लिया है या लेने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए सारे संसार का दुख ऐसे बन जाता है। और यस्मिन स्थितो, और इसीलिए न दुखे न गुरुनापि विचाल्यते, और कभी वो विचलित नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है जो भी हो रहा है इसी में मेरी कुछ भलाई है और मैं समझ सकता हूँ इसे कुछ सीखना है। तो ये अगर हमको प्राप्त करना है इस स्थिति को, तो सबसे पहले हमको इस जो शारीरिक हमारी जो मतलब अवस्था है, अपने आप को हम शरीर समझ रहे हैं, बॉडीली कॉन्सेप्ट, इससे ऊपर आना है, अपने आप को हम आत्मा के स्तर पर लाना है, देहात्म बुद्धि जिसे कहते हैं, उसको छोड़कर अपने आप को आत्मा ये समझने के लिए उस स्थिति पर हमको आने की कोशिश करना चाहिए। और इसीलिए जब हम भगवान की शरण लेंगे, जितना हम शरण लेने की कोशिश करेंगे तो उतना हद तक हम ये इसको पार कर सकते हैं। और तीसरे श्लोक में बताया गया है तम विद्या, देखिए अब ये हो गया कि उस स्थिति पर आ गए, तो इसको हमने ये जान लिया कि सर्वोच्च भक्ति मतलब आनंद क्या है, जो अनंत है, भगवान के साथ नित्य रिश्ता है आत्मा और परमात्मा का। और दूसरा था कि उसका लक्षण क्या है, कि इससे बढ़कर और कोई आनंद की हमको इच्छा नहीं है, और किसी स्थिति इस भौतिक संसार में वो विचलित नहीं होता है, ये उस व्यक्ति का लक्षण है। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस चीज को कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि उसके बिना क्या फायदा है सब सुनना, थियरी हो गया, अभी प्रैक्टिकल, भाई इसको कैसे प्राप्त किया जाए, अपने जीवन में कैसे उतारा जाए। और वो एक ही श्लोक के आधा श्लोक में बताते हैं कि तम विद्याद दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम, के तम विद्याद अगर उसे प्राप्त करना है तो दुख संयोगम, दुख संयोग जो है पदम पदम यत विपदम, देखिए हम थियोरी बोल रहे हैं, ये प्रैक्टिकल है, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, हम सोच नहीं सकते कब क्या होगा किसी को। तो ये वहां प्रभुपाद इसका ट्रांसलेशन ये देते हैं कि दिस इंडीड इज एक्चुअल फ्रीडम फ्रॉम ऑल मिजरीज अराइजिंग फ्रॉम मटेरियल कॉन्टैक्ट योग संगीतम। तो ये योग है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं। तो ये असली में योग है जिसके द्वारा हम इसे प्राप्त किया जाता है। और योग क्या है, अपनी इंद्रियों को काबू में करना, इंद्रियों को काबू में करना ही योग है। और इंद्रियों को काबू में करने के लिए मन जो है वो इंद्रियों को काबू में कर सकता है। तो अगर इंद्रियों हम इंद्रियों में अगर काबू करना है मन के द्वारा, और अगर मन को काबू में करना है तो हमारी बुद्धि के द्वारा मन को काबू में करके जिसके द्वारा वो इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। पर हमें मालूम है भगवान ने जब अर्जुन को ये बताया तो वो भी कह रहे थे कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथ ही बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। कि चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण मन बड़ा चंचल है, प्रमाथ ही बलवत् दृढ़म, बहुत ही इसे वश में करना बड़ा। को संयम में करके इंद्रियों को वश में करना, यह असली में योग है। और सारे योग का उद्देश्य यही है कि इंद्रियों को वश में करके धीरे धीरे मन को वश में लाना, संयम में लाना। और क्योंकि खास करके हम जब जप करने बैठते हैं तो हमें मालूम है कि मन कितना चंचल है, उस समय हमारा मन का असली रूप नजर आता है। और हमारे मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं जो शायद सालों भर नहीं आए थे, जो सालों से पहले हुआ था, यानी कि आज या कल 10 साल पहले 20 साल पहले जो हुआ था वो भी याद आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो पूरे दिन में नहीं याद आते हैं उसी समय हमको याद आने लगते हैं, ये करना है वो करना है, यानी मन इसको सुनना नहीं चाहता है। जैसे घोड़े के समान है इंद्रियां, और इंद्रियां इधर उधर भागना चाहते हैं, और उसको अगर वश में करना, घोड़े को वश में करना, आपने अगर जंगली घोड़ा देखा है और उसको वश में करने की कोशिश की, वो ऐसे उछलता है कि बहुत मुश्किल होता है उसको वश में करना, जंगली घोड़े को वश में करना। तो इस तरीके से इसीलिए घोड़े का इंद्रियों को घोड़े का एक तुलना की जाती है, उसको वश में करना बड़ा ही मुश्किल है, और एक नहीं पांच पांच और लगाम सारे सामने आए हुए हैं, और व्यक्ति जो है मन उसे पकड़ने की कोशिश कर, अगर छूट गया तो पांच अगर इधर उधर भाग रहे हैं, एक करना मुश्किल है, फिर पांच करना बड़ा मुश्किल। इस तरीके से हम एकदम विचलित हो जाते हैं और नहीं कर पाते हैं, विफल हो जाते हैं। तो जो सारे नियम बताए गए हैं इस बहुत भक्ति में, जब हम आते हैं बहुत सारे नियम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बताए गए हैं, इसका पालन करना बहुत जरूरी है। इसका यही एक उद्देश्य है, सततम स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधाः स्युरेतयोरेव किंकरा। सारे नियम का उद्देश्य एक ही है, स्मर्तव्य सततम विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की चिंतन हमेशा मन में करो, और सारे रेगुलेशंस हैं इसका एक ही उद्देश्य है, विस्मर्तव्यो न जातुचित, कभी भगवान को भूले नहीं। तो ये करने के लिए, उस स्तर पर आने के लिए धीरे 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 ये सब साधना भक्ति बताई गई है। तो ये नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, जितने अच्छे तरीके से छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो मंदिर में आते साथ भक्तों को देखकर प्रणाम करना हो, या भगवान के सामने जो सर झुकाना हो, या तिलक लगाना हो, या कंठी माला पहनना हो, या नियमों का पालन करना हो, या भगवान का नाम बड़े अच्छी तरह से जप करना हो, जो भी हो, छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े तक, जितने हद तक हम अच्छी तरह से उसको पालन करेंगे उतने हद तक हम प्रगति करेंगे और अपनी इंद्रियों को काबू में कर सकते हैं। तो ये पालन करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि जितना जितना हम पालन करेंगे उतना उतना हम भगवान के बारे में चिंतन कर रहे हैं, और भगवान हमारे मन में आकर बैठ जाते हैं, और जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। अगर मन में भगवान का चिंतन है तो कृष्ण सूर्य समान, कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार के समान है, और जहां कृष्ण है वहां माया कभी नहीं हो सकती है। तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हम कर रहे हैं उसका उद्देश्य यही है कि हम भगवान का चिंतन सतत करें। तो हमारा मन जो है अभी क्या कर रहा है, बहुत सारे चीजों पर ले जा रहा है, बहुत सारे वस्तुओं पर ले जा रहा है, और कह रहा है कि इसका लोग इसका उपभोग करो, इसका उपभोग करो, और इसे हमें खींचे ले जा रहा है बाहर। तो अगर हमको वश में करना है तो सबसे पहले ये जो घोड़े हैं पांच घोड़े, इंद्रियों को घोड़े के समान बताया गया है, मन को लगाम बताया गया है, और बुद्धि को सारथी बताया गया है, और जो आत्मा है वो पैसेंजर, जो व्यक्ति बैठा हुआ है। तो इस तरीके से अभी क्या हो रहा है, मन एकदम छूट गया, लगाम छूट गया है, और घोड़े इधर उधर भाग रहे हैं, और जो व्यक्ति है बैठा हुआ है वो डर से और पूरे निस्सहाय रूप से बस देख रहा है कि कहाँ जा रहे हैं। आप समझ लीजिए, आप 90 किलोमीटर पे जा रहे हैं गाड़ी में और आपका स्टीयरिंग व्हील घुमाए तो कनेक्शन ही टूट गया, बस घूम रहा है ऐसे और ब्रेक में दबाए तो वो एकदम अंदर घुस जाता है, बस कुछ नहीं, और एकदम ऐसे भागे जा रहा है गाड़ी डाउन। अब सामने पहाड़ है, नीचे खाई है बहुत बड़ी, अब कुछ नहीं कर सकते, बस देख रहे हैं, डर है और निस्सहाय है, कुछ भी दबाव कुछ नहीं होने वाला है, और अब देख रहे हैं कि एकदम अभी गिरते जा रहा है। इस तरीके से बुद्धि को मालूम है कि ये सब मूर्खता है मैं कर रहा हूं, पर इंद्रिया हमको एकदम खींचे जा रही है और हम देखते 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 चले जाते हैं उसके पीछे। हम अपने जीवन में देखते हैं, हमें मालूम है ये करना बुरा है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, पर जबरदस्ती ये जो घोड़ा है, इंद्रियों का घोड़ा हमें खींचे ले जा रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते, बस देखते देखते रहते हैं, हाँ गया 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 बस, हाँ हो गया बस। इस तरीके से एकदम निस्सहाय रूप से डर के मारे देख रहे हैं, ये नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमारे कंट्रोल से पूरा बाहर है। तो ये निस्सहाय, फिर से हम किसका सहाय लें, अपने आप को अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम कार में बैठे हुए हैं, कार से कूदे तो वो भी मर जाएंगे, नहीं कूदे तो मरना तो गारंटी है, तो क्या करें हम। तो वहां इसीलिए बताया गया है कि ये अगर हम कृष्ण भावना के जो नियम है, सर्वप्रथम भगवान का नाम जप, ये सब सबसे पहले और सब दूसरा चीज बाद में, कम से कम भगवान का नाम जप शुरू करना चाहिए हमको, जैसे बताया गया है वैसा कम से कम शुरू कर हो सके, जैसे हम लोग 16 माला करते हैं तो कम से कम हमको ऐसे शुरू करना चाहिए जितना हो सके उतना नियमित रूप से हर रोज इतना। और दूसरा है किसी तरह से मन को इधर उधर जब इंद्रिय तृप्ति के लिए और अपनी सुख पाने के लिए जब भागता है तो बुद्धि को कहना चाहिए मूर्ख, बुद्धि के द्वारा मन को बतलाना चाहिए कि मूर्ख यहाँ कोई सुख नहीं है, तेरा असली सुख इधर है। इस तरीके से इस श्रवण के द्वारा जब हम भगवान अपने मन को इंद्रियों के द्वारा जब हम जप करते हैं तो सारी इंद्रियां मग्न हैं, हमारी स्पर्श इंद्रिय है माला घुमा रही है, हमारे जो जिह्वा है वो भगवान का नाम जप कर रहा है, हमारा कान है भगवान का नाम श्रवण कर रहा है, तो इस तरीके से सारी इंद्रियां जो हैं पूरी तरह से भगवान के नाम जप में जब मग्न हो जाती है तो अपने आप इंद्रियां संयम में आ जाती हैं। ये अपने आप, ये एक विज्ञान है, ये ऐसे नहीं कि आपको होगा मेरे को नहीं होगा आज को होगा, नहीं, ये विज्ञान है सबको लिए जिसने भी अगर इसे अपनाया है। क्योंकि विज्ञान का मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे मालूम नहीं था और मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया तो कुछ और बन गया, नहीं, चाहे मालूम हो या नहीं हो फिर भी अगर आपने ये चीज को मिलाया है तो वही आने वाला है, परिणाम वही होने वाला है। इस तरीके से अगर जाने या ना जाने भगवान के नाम की महिमा को, जाने या ना जाने फिर भी भगवान का नाम लेते हैं तो अपने आप अपने इंद्रियों को हम संयम में कर लेते हैं, जिसके द्वारा मन संयम में आ जाता है। और जब भगवान का नाम स्मरण में जितने हद तक हम सारे नियमों का पालन करते हैं उस हद तक भगवान हमारे मन में रहते हैं, और जब रहते हैं तो चार चीज हो जाती है। क्या होती है? एक, कि हम इस भौतिक संसार से जीवन मुक्त स उच्यते, इस संसार में कर्म इहा यस्य हरिर्दास्ये मन कर्मणा मनसा गिरा निखिलश्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अगर कर्मणा मनसा गिरा, मनसा वाचा कर्म, मन कर्म और वाणी से 24 घंटे हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो इस शरीर में होते हुए भी हम मुक्त आत्मा हैं। अगर हमारे सारे कर्म भगवान की खुशी के लिए है, हम जो भी सोचते हैं वो भगवान का ही विचार हो, हम जो भी बोलते हैं वो हमारे और दूसरों की फायदा के लिए भगवान की सेवा के लिए हो, तो अपने आप 24 घंटे हम इस शरीर में होते हुए भी, बद्ध होते हुए भी मुक्त आत्मा है, जीवन मुक्त स उच्यते। तो ये पहला लक्षण है कि हम पूरी तरह से इससे मुक्त हो जाते हैं। दूसरा, मन एकदम शांत हो जाता है, किसी स्थिति में मन कभी विचलित नहीं होता है। तीसरा क्या होता है कि हमारे सारे जो काम वासनाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जो भी मतलब वॉल्केनो ज्वालामुखी के समान भड़क रहे हैं, वो एकदम शांत हो जाते हैं। और चौथा, जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो ही मिट जाती है। क्योंकि लोग पाप का प्रायश्चित करते हैं कि मैंने ऐसा काम कर दिया, ठीक है एक ब्राह्मण को खाना खिला दो तो पाप नष्ट हो गया। अरे नष्ट हो गया पर कल फिर भी करने वाले हो ना, प्रवृत्ति नहीं गई। परीक्षित महाराज ने कहा, जब परीक्षित महाराज को सुखदेव महाराज ने बोला कि भाई प्रायश्चित करो, तो बोलते हैं नहीं नहीं ये तो ऐसा है कि जैसा हाथी का नहाना, कुंजर शौचवात, हाथी क्या करता है, बड़े सुंदर से तालाब में नहाता है, बाहर आकर मिट्टी लेकर अपने सर पर डालता है। तो इस तरीके से पाप तो हम करते हैं, फिर भगवान के सामने माफ कर देना भगवान, फिर जाके वापस पाप में करते हैं, फिर संडे को आके भगवान माफ कर देना, सोमवार से शनिवार तक फिर पाप करना, ये कोई फायदा नहीं है। कुंजर शौचवात, हाथी के समान स्नान करना, आज नहीं करूंगा भगवान माफ कर देना, कल जाके फिर वापस। और क्यों क्यों हम नहीं कर पाते हैं, तो दिन की बात है। फिर साल में एक बार दिसंबर 31 तारीख को बैठ के आज से ये नहीं करूंगा, कल से ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, जनवरी 4 तारीख से फिर से चालू, ये नहीं होने वाला, अपनी में शक्ति नहीं है, क्योंकि एकदम हैंडल छूट गया है, हमारा स्टीयरिंग व्हील कट गया है, अभी बस भगवान के हाथ में सौंप दो स्टीयरिंग को, वो एकदम स्टीयरिंग वे बैक टू गॉड हेड, वापस ले जाएंगे हमें भगवत धाम। तो हाँ, जो प्रवृत्ति है पाप करने की, उसको भगवान हटा डालते हैं। अगर पाप करने की प्रवृत्ति ही ना हो तो फिर कोई तकलीफ नहीं, प्रवृत्ति हो तो फिर पश्चाताप करके कोई फायदा नहीं। तो प्रवृत्ति हम अपने आप से नहीं हटा सकते, सिर्फ भगवान के नाम के जब शरण लेते हैं तो उसके द्वारा ये योग जो है ये प्राप्त हो सकता है, और तब परम सुख जो है, परम आनंद जो है, उसका हम अनुभव धीरे 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 करने लगते हैं। और 28वें श्लोक में बड़े सुंदर से बताता है, युंजन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मशः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। क्या होता है, युंजन एव सदात्मानम, अपने ही अंदर में इस आत्मा में युंजन एवं अगर स्थित हैं इस योग में, तो क्या होता है, योगी विगत कल्मशः, सारे कलमश से वो धीरे धीरे बाहर हो जाता है, और सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, क्योंकि भगवान का कॉन्टैक्ट, भगवान है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम बाह्याभ्यंतर शुचिः। भगवान का नाम करने से बाहर और अंदर से पूरी तरह से हम शुद्ध हो जाते हैं। ये ऐसा साबुन है जो बस बाहर ही साफ नहीं करता, अंदर भी साफ करता है। कोई ऐसा साबुन आज तक भौतिक संसार नहीं बनाया जो बस बाहर से साफ करे और अंदर से भी साफ करे, हृदय अंदर जाके मन को साफ करे, बुद्धि को भी साफ कर दे, ऐसा कोई साबुन आज तक नहीं बना। ये हरिनाम का साबुन है। तो ये साफ युंजन एवं योगी विगत कलमशः, सारे कलमश को हमेशा के हटा डालते हैं। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम, और ये पवित्र ज्ञान है, इतना पवित्र है कि बस इसके नाम से, भगवान अपने नाम और नामी अभिन्न नाम नामी, भगवान अभिन्न है, तो जब भगवान हमारे हृदय में भगवान के नाम के द्वारा अपने जिह्वा पे आ जाते हैं तो पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। भगवान कुरुक्षेत्र में थे तो 64 करोड़ लोग थे, सबको मुक्ति मिल गई, चाहे वो दुर्योधन के पार्टी में थे या अर्जुन के पार्टी में थे, भगवान के उस कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में होते हुए सब हो गया। और भगवान हमारे जिह्वा पर आ जाते हैं तो फिर हमारे पापों का क्या कहें, इतना हमको विश्वास होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। किस व्यक्ति को यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अगर आपको श्रद्धा है तो लभते ज्ञानम, और दृढ़ता, श्रद्धा मीन्स दृढ़ता। अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर साहब ऐसा बीमारी है, और वो हमें कुछ दवाई दे दे, बोले दवाई क्यों लेना, मुझे श्रद्धा नहीं है, सचमुच में ये ऐसे ठीक करेगा, ये डॉक्टर देखने में ऐसा लगता है, मेरे को नहीं लगता है ठीक, अगर उस भाव से नहीं लेंगे, ले दो दिन लिए, अरे अभी तक नहीं गया, ये 4 दिन का और दवा क्यों फालतू लेना, नहीं लेंगे। तो श्रद्धावान, अगर श्रद्धा नहीं है तो चाहे सबसे अच्छा भी डॉक्टर क्यों ना हो, कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, श्रद्धावान। और इसका लक्षण क्या है, हमको श्रद्धा है, तत्पर संयतेन्द्रिय, बोलेंगे इंद्रियों को संयम में करो तो हम करेंगे। उन्होंने कहा है कि ये करना ही है तुम्हें, जब करना ही है 16 माला, ठीक है हम करेंगे, हम श्रद्धा है, हालांकि हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा है, जब से जब करना मैं शुरू किया हूं मन ज्यादा विचलित हो रहा है, ठीक है परवाह नहीं है, क्योंकि जब दवाई लिए हैं तो सारा जो बुखार था ऊपर आ रहा है, अभी सर पे चढ़ रहा है, परवाह नहीं, पर जाने वाला है, निकलेगा, इतना विश्वास हमको होना चाहिए। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, इंद्रियों को संयम में करेंगे मन के द्वारा, बोले मुझे अच्छा लगे या ना लगे, हमको संयम में करना ही है, ये हमको होना चाहिए। योगी विगत कलमशः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, भगवान की जब स्पर्श में हम आ जाते हैं, भगवान के निकट में आ जाते हैं, अत्यंतम सुखम अश्नुते, अत्यंत सुख का हम अनुभव करते हैं। तो भगवान एक एक छोटे से, मतलब 1-2-3 श्लोक में भगवान ने कितने सुंदर तरीके से पूरे जो परम सुख है वो क्या है, जो प्राप्त किया है उसका लक्षण क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जाए इसका वर्णन किया है। ये चीज हमको जानना चाहिए। परम आनंद वही है जो आत्मा के स्तर पर है, परमात्मा के संपर्श में, भगवान के संपर्श में, क्योंकि हम उनके भगवान के अंश हैं और उनके साथ उस रिश्ते में जो भी हम सेवा करते हैं, काम करते हैं, वो अश्वेत में रासलीला है। ये ही परम सुख है। इसके अलावा जो भी सुख है उसको प्राप्त करेंगे तो यम लब्ध्वा चा परम लाभ, हम दूसरा लाभ मिल गया तो वो ले लेंगे हम। इसीलिए बड़े बड़े योगी जो भगवान जानते हैं, आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतंती, फिर से गिर जाते हैं वो। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी नीचे गिर जाते हैं क्योंकि भगवान के चरण कमल का आश्रय नहीं लिया उन्होंने। एक दूसरा इसका लक्षण क्या है कि और कोई चीज इसके सामने हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है सारे तीनों लोकों में, स्वर्ग सुख भी। और और उसका दूसरा लक्षण है गुरुणापि विचाल्यते दुखेन, किसी भी बहुत से बहुत भी बुरी स्थिति में हम विचलित नहीं होंगे। तब हमको समझना चाहिए कि धीरे धीरे हम प्रगति कर रहे हैं, कम से कम इसका थोड़ा भी लक्षण तो आ जाए। और तीसरा है ये जब प्राप्त करेंगे और प्राप्त करने का तरीका क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने बड़े सिंपल कर दिया है। आपको नाक बंद कान बंद करके 8 घंटा बैठने की जरूरत नहीं। भगवान ने बड़े सुंदर से कीर्तनीय सदा हरि, भगवान का कीर्तन, कीर्तन यानी करताल और मृदंग के साथ ही नहीं है, कीर्ति, भगवान की कीर्ति का गुणगान करना, ये जो है ये भी कीर्तन है। जब भगवान के बारे में किसी को बतलाते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का नाम श्रवण करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये 9 विधा भक्ति है। अर्चनम भगवान की पूजा करना, वंदनम भगवान को सुंदर सुंदर प्रार्थनाओं से पूजा करना, इसके द्वारा हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है। और सबसे पहले शुरुआत इसकी कैसे हो सकती है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, भगवान के नाम के द्वारा। तो इसीलिए अगर परम सुख हमको परम आनंद प्राप्त करना है सचमुच में, हम अगर बुद्धिमान हैं, सुमेधसा यज्ञ ही संकीर्तन ही पे आए यजंति ही सुमेधसा, अगर सुमेधसा हमारा मेध मेध यानी बुद्धि सुमेधसा, अगर कुछ हमारी दिमाग अच्छा है, अगर हम सीरियस हैं तो हम इसको लेंगे, अगर नहीं है तो हम और हमारे में और प्राणियों में कोई अंतर नहीं है, जो बस ऐसे छोटे सुख में सुख रह रहे हैं। हरे कृष्ण।